हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 15 श्लोक संख्या 12 से लेकर पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीतांबर धरुणबिंबफल धरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखात् हरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्व अहम् न जानि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशास्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद्भागवतम तीसरा स्कंद पहला अध्याय, जिसका शीर्षक है ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन। हमने अब तक पढ़ा कि जब कश्यप मुनि का वीर्य दिति के गर्भ में स्थापित हो गया, क्योंकि वो असमय में गर्भधान हुआ था और कश्यप मुनि ने दिति को बताया था कि तुम्हारे गर्भ में बहुत ही भयंकर असुर का वास होगा, इसलिए ये दो असुर जो उनके गर्भ में आए उनको दिति ने बहुत समय तक 100 वर्षों तक अपने ही गर्भ में समय रखा, यानी उनका जन्म नहीं हुआ, लेकिन वो गर्भ में ही आए थे, उसी समय से सबको पीड़ा देना प्रारंभ कर लिया था और सारे देवी देवता बहुत ज्यादा दुखी थे और देवी देवता बोल रहे थे कि ये आखिर ऐसा क्या हो रहा है संसार में कि जिसके कारण हमारा सबका जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, जो चंद्रमा का प्रकाश है, वो ही मंद हो गया है और हम अपना कोई कार्य भी नहीं कर पा रहे। इसका कारण ही उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो सारे देवी देवता जो हैं ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा कि आप क्योंकि संसार को बनाने वाले हो, आपको पता होगा कि आखिर ऐसा क्या है जिसका कारण हम सब देवता बहुत ज्यादा दुखी हैं और हमारा सबका प्रकाश समाप्त हो गया है। तो उस कारण के विषय में आप हमें बताइए और उसके समाप्त करने का भी कोई उपाय बताइए, ताकि हम पुनः संतुष्टि के साथ अपना कार्य कर सकें। तो इतना बहुत सुंदर उस स्तुति की कल हमने सुनी देवताओं के द्वारा ब्रह्मा जी की स्तुति, और अब ब्रह्मा जी उत्तर देना प्रारंभ कर रहे हैं कि आखिर इस सब का कारण क्या है। ब्रह्मोवाच मानसामि सुतायुष्मत् पूर्वजा सनकादया चिरुर्विहाया सालोका लोकेषु विगतस्पृहा मानसामि सुतायुष्मत् पूर्वजा सनकादया चिरुर्विहाया सालोकात् लोकेषु विगतस्पृहा। ब्रह्म उवाच अर्थात प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा, मानसा में सुता, मानसा यानी मन से उत्पन्न हुए मैं मेरे सुता यानी पुत्र, युष्मत् तुम्हारी उपेक्षा, पूर्वजा पहले उत्पन्न, सनकादया सनक इत्यादि ने, चेरु अर्थात यात्रा की, विहायसा अंतरिक्ष में, यान द्वारा या आकाश में उड़कर, लोकाल लोकेशु, लोकान मतलब भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों तक, लोकेशु यानी लोगों के बीच, विगत स्प्रिहा अर्थात किसी इच्छा से रहित होकर। अनुवाद, ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे मन से उत्पन्न चार पुत्र सनक, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार तुम्हारे पूर्वज हैं। कभी कभी वे बिना किसी विशेष इच्छा के भौतिक तथा आध्यात्मिक आकाशों में होकर यात्रा कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते, जब हम अपनी इच्छा की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय भौतिक इंद्रिय तृप्ति से होता है। सनक, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार जैसे संत पुरुषों में कोई भौतिक इच्छा नहीं होती है, अपितु वे कभी कभी सारे ब्रह्मांड में स्वेच्छा से भक्ति का प्रचार करने के लिए यात्रा करते हैं। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि चेरुर विहायसा लोका लोकेशु विगतस्पृहा, कि वो जो ब्रह्मा जी बता रहे हैं, मेरे चार पुत्र जो तुमसे भी पूर्वज हैं, तुमसे भी पहले पूर्वजा पहले उत्पन्न हुए हैं, सनक, संदन, सनातन और सनत कुमार, वो बगैर किसी इच्छा के किसी भी लोक में चले जाते हैं ताकि जीवों का कल्याण हो सके। और ऐसा एक बार वो कर रहे थे, अलग अलग लोकों में गए, तो क्या हुआ, त एकदा भगवतो वैकुंठस यामलात्मना युयुर्वैकुंठ नीलायम् सर्वलोक नमस्कृतम्। त एकदा भगवतो, त एकदा मने एक बार, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार क्या हुआ, भगवत भगवान ने वैकुंठस्य अर्थात भगवान विष्णु का अमल आत्मना समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हुए, युयु प्रविष्ट हुए वैकुंठ निलयम अर्थात वैकुंठ नामक धाम में, सर्वलोक अर्थात समस्त भौतिक लोकों के निवासियों के द्वारा नमस्कृतम यानी पूजने पूजित। अनुवाद, इस तरह सारे ब्रह्मांडों का भ्रमण करने के बाद वे आध्यात्मिक आकाशों में भी प्रविष्ट हुए, क्योंकि वे समस्त भौतिक कलमश से मुक्त थे, आध्यात्मिक आकाश में अनेक आध्यात्मिक लोक हैं जो वैकुंठ कहलाते हैं, जो पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों के निवास स्थान है, और समस्त भौतिक लोकों के निवासियों द्वारा पूजे जाते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो सारे ब्रह्मांडों को घूमते घूमते देखा उन्होंने, हर जगह कुंठ है, दुख है, तो वो एक वैकुंठ लोक में पहुंचे जहाँ कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये ऐसा लोक है सर्वलोक नमस्कृतम, कि जितने भी भौतिक लोक हैं, आध्यात्मिक लोक हैं, उन सब लोकों के द्वारा पूजित है। उस लोक में जब पहुंचे तो क्या हुआ वो बाद में पढ़ते हैं। पहले श्रील प्रभुपाद जी क्या बताते हैं तात्पर्य में, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भौतिक जगत चिंताओं से पूर्ण है, सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम लोक तक, पाताल तक के सारे लोकों में सारे सजीव प्राणी चिंताओं से ग्रस्त और व्यग्रताओं से पूर्ण रहते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में कोई भी प्राणी शाश्वत निवास नहीं कर सकता, किंतु जीव वास्तव में शाश्वत है, उन्हें शाश्वत घर, शाश्वत धाम चाहिए, किंतु भौतिक जगत में अस्थाई धाम स्वीकार करने के कारण वे स्वभावतः चिंता से ओतप्रोत रहते हैं। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम सब शाश्वत हैं, शाश्वत मतलब इटरनल हैं, तो हमको कोई टेम्पररी चीज आनंदित नहीं कर सकती है। हमें इस भौतिक जगत में जितने भी लोग हैं, चाहे वो नीचे वाले अतल वितल तलातल महातल रसातल पाताल हो, या जनलोक बुहरलोक भूलोक जनलोक तपलोक महरलोक सिद्धलोक या सत्यलोक, जितने पवित्र लोक क्यों न हो, भगवान कहते हैं आ ब्रह्म भुवना लोक का पुनरावृत्ति नो अर्जुन, आप किसी भी लोक में चले जाओगे आपको दोबारा आना पड़ेगा। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बोलते हैं कि जीव तब तक आनंदित नहीं हो सकता जब तक कि उसे शाश्वत धाम में ना जाया जाए, उन्हें शाश्वत कर शाश्वत धाम चाहिए, किंतु भौतिक जगत में अस्थायी धाम स्वीकार करने के कारण वे स्वभावतः चिंता से ओतप्रोत रहते हैं, वो हमेशा दुखी रहते हैं। आध्यात्मिक आकाश में सारे लोग वैकुंठ कहलाते हैं, क्योंकि इन लोगों के निवासी सारी चिंताओं से मुक्त होते हैं, उनके लिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि अवस्था रोग का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, अतएव वे चिंताग्रस्त नहीं रहते हैं। दूसरी ओर भौतिक जगत के निवासी सदैव जन मृत्यु रोग तथा वृद्धावस्था से भयभीत रहते हैं, अतएव वे चिंताओं से ओतप्रोत रहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इस भौतिक जगत में हर कोई दुखी रहता है, कभी किसी का जन्म होता है उसमें दुख, मृत्यु होती है उसमें दुख, जो जन्म आया उसको रोग होता है, बुढ़ापा होता है, लेकिन वैकुंठ लोक में ये सब दुख नहीं झेलने पड़ते। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि उन वैकुंठ लोकों में जितने भी जीव हैं, जितने सारे वहां पर जो रहते हैं, वो सब भगवान के समान दिखते हैं, उनके अंदर कोई भौतिक इच्छाएं नहीं रहती हैं, वो केवल भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं वसन्ति यत्र पुरुषा सर्वै वैकुंठ मूर्तया ये निमित्तेन धर्मेण आराधयन् हरिम्। वसन्ति यत्र पुरुषा, वसन्ति माना निवास करते हैं, यत्र यानी जहां, पुरुषा यानी व्यक्ति, वहां पर जो व्यक्ति पुरुष जो निवास करते हैं, सर्वे वैकुंठ मूर्तया, सर्वे सारे वैकुंठ मूर्तया यानी वैकुंठ भगवान विष्णु की ही तरह चार भुजाओं वाले थे, देखने में उनके जैसे ही दिखते हैं, और ये यानी वे वैकुंठ पुरुष अनिमित अर्थात इंद्रिय तृप्ति की कोई इच्छा नहीं रखते, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से ये अनिमित्त निमित्तेन, अनिमित्त मतलब उनकी कोई इच्छा नहीं है, निमित्तेन मतलब उत्पन्न होते हैं, क्या
धर्मेण राधयन् हरि। धर्मेण अर्थात भक्ति के द्वारा, आराधयन अर्थात निरंतर पूजा करते हैं हरिम भगवान की। अनुवाद, वैकुंठ लोक में सारे निवासी पुरुषोत्तम भगवान के समान आकृति वाले होते हैं। वे सभी इंद्र तृप्ति की इच्छाओं से रहित होकर भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, इस श्लोक में वैकुंठ के निवासियों तथा रहन सहन के स्वरूप का वर्णन हुआ है। उसके निवासी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण जैसे ही होते हैं। वैकुंठ लोक में कृष्ण का स्वांश नारायण के चतुर्भुजी रूप में प्रदान देव होता है और वैकुंठ लोक के निवासी भी चतुर्भुजी होते हैं, जो भौतिक जगत की हमारी अवधारणा से सर्वथा विपरीत हैं। भौतिक जगत में कहीं भी हमें चार हाथों वाला मनुष्य नहीं मिलता। वैकुंठ लोक में भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई वृत्ति ही नहीं होती है और यह सेवा सोद्देश्य नहीं संपन्न की जाती है। यद्यपि प्रत्येक सेवा का विशेष फल होता है, किंतु भक्तगण कभी भी अपनी निजी इच्छाओं की पूर्ति की कामना नहीं करते। उनकी इच्छाएं भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करने से ही पूर्ण हो जाती हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। यहाँ बहुत ही सुंदर संदेश है हम सबके लिए कि ऐसा नहीं है कि हम केवल भगवान के सामने इच्छाएं बोलेंगे तभी भगवान पूरी करेंगे। हम यदि भगवान के समक्ष चुप रहेंगे, कुछ नहीं चाहिए, इच्छा नहीं भी करेंगे, तो क्या भगवान को नहीं पता कि हमारी क्या आवश्यकताएं हैं? भगवान कहते हैं, आप अनन्य रूप से केवल मेरा चिंतन करो और उसके बाद आपकी जिम्मेदारी मेरी है। योगक्षेम वाहम्यहम्। मैं आपको स्वयं वही सारी वस्तुएं प्रोवाइड करूंगा जिनकी आपको आवश्यकता है और जो आपके पास है उनको सुरक्षा भी प्रदान करूंगा। तो श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्तगण कभी भी अपनी निजी इच्छाओं की पूर्ति की कामना नहीं करते हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए। उनकी इच्छाएं भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने से ही पूर्ण हो जाती हैं। हृदय तो आनंदित होता ही है जब हम प्रेम के साथ भगवान का सुमिरन करते हैं। और वस्तुओं को क्या करना, क्योंकि भौतिक वस्तुएं कभी भी हमें आनंद प्रदान नहीं कर सकती। और जो आवश्यकताएं हैं वो तो भगवान उनकी भी पूरी करते हैं। जो उनकी भक्ति नहीं करते तो क्या अपने भक्तों को यूं ही छोड़ देंगे? नहीं, वो अपने भक्तों को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं। वो कभी अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते। इसलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके अंदर कोई ये भौतिक इच्छाएं नहीं होती, बल्कि धर्मेण राधयन् हरिम्। बस उनकी एक ही इच्छा होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा भगवान की कैसे सेवा करूं, कैसे मैं भगवान की भक्ति करके भगवान को प्रसन्न करूं। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, यत्र चाद्यः पुमान् आस्ते भगवान् शब्दगोचर सत्वं विष्टभ्य विरजम् स्वानाम् नो मृडन् मृडयन् ऋषः। यत्र, यत्र मतलब वैकुंठ लोक में, जहां पर अभी ये चार कुमार गए थे ना। चाद्यः च मन तथा आद्य मन आदि, पुमान यानी पुरुष, आस्ते हैं भगवान अर्थात भगवान शब्द गोचरा वैदिक वांग्मय के माध्यम से समझा गया। तो अब ब्रह्मा जी बता रहे हैं उस वैकुंठ में आदि पुरुष भगवान जो वैदिक वांग्मय के द्वारा या वेदों के द्वारा समझे जा सकते हैं वो निवास करते हैं। और सत्वम विष्टभ्य विरजम, सत्वम अर्थात सदैव सत्वगुण में होते हैं, विष्टभ्य स्वीकार करते हैं, विरजम अर्थात अकुलुषित निर्मल होते हैं, उनके अंदर रजोगुण तमोगुण नहीं होता है, सत्व में होते हैं। और स्वानाम नो मृडयन वृष, स्वानाम यानी अपने संगियों का, न मन हमको, मृडयन सुख को बढ़ाते हुए, वृष साक्षात धर्म। अनुवाद, वैकुंठ लोकों में भगवान रहते हैं जो आदि पुरुष हैं और जिन्हें वैदिक वाङ्मय के माध्यम से समझा जा सकता है। वे कल्मश रहित सत्वगुण से ओतप्रोत हैं, जिसमें रजो या तमोगुण के लिए कोई स्थान नहीं है। वे भक्तों की धार्मिक प्रगति में योगदान करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, आध्यात्मिक आकाश में भगवान के साम्राज्य यानी धाम को वेदों के वर्णन से सुनने के अलावा किसी अन्य विधि से नहीं समझा जा सकता। कोई जाकर इसे देख नहीं सकता। इस भौतिक जगत में भी जो व्यक्ति किसी दूरस्थ स्थान पर मोटर वाहन द्वारा जाने का खर्च उठाने में असमर्थ है, वे उस स्थान के बारे में प्रमाणिक पुस्तकों द्वारा ही जान सकता है। इसी तरह आध्यात्मिक आकाश में जो वैकुंठ लोक है, वे इस भौतिक आकाश से परे है। आधुनिक विज्ञानी जो अंतरिक्ष में यात्रा करने का प्रयास कर रहे हैं, वो निकटतम लोक चंद्रमा तक भी जाने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक की बात तो दूर ही रही, इसकी कोई संभावना नहीं है कि वे भौतिक आकाश से परे आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश कर सके और स्वयं इन आध्यात्मिक वैकुंठ लोकों को देख सकेंगे। अतः आध्यात्मिक आकाश में ईश्वर के साम्राज्य को वेदों तथा पुराणों के प्रामाणिक विवरणों से के माध्यम से ही समझा जा सकता है। जो यहाँ पर बताया गया भगवान शब्द गोचरा, यानी अब देखो, कोई ऐसा प्रमाण, आज का साइंस क्या मांगता है कि हमको प्रमाण चाहिए। क्या किसी ने वैकुंठ देखा है? किसी ने देखा नहीं तो हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि वैकुंठ है? तो फिर वो स्वीकार ही नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हर किसी के बस की बात थोड़े है कि जो दिल करेगा जाकर वैकुंठ देख कर आएगा, क्योंकि भगवान ने कहा ये तो वो लोक है यद्गत्वा निवर्तन्ते, जिसे जहां जाकर तो कोई आता भी नहीं है। तो यदि वैकुंठ लोक को जानना है तो उसका एक ही तरीका है कि हम शास्त्रों को सत्य माने, शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उन्हीं के अनुसार हमको वैकुंठ लोक के विषय में पता चलता है। तो जो लोग ना नहीं जा सकते हैं, उनका एक ही तरीका है ना, जैसे संसार में भी अगर कोई अमेरिका नहीं जा सकता है, तो जिस किताब में हमको उसकी नॉलेज मिलेगी तो हम उसको पढ़कर हम समझ जाते हैं कि भाई अमेरिका कैसा है। तो उसी तरह से आध्यात्मिक जगत में भी जो वैकुंठ लोक है उसको जानना है तो उसका एक ही तरीका है, शब्द गोचरा, कि हम उन शास्त्रों को पढ़ें जिनमें उनके विषय में बताया गया। बाकी जाने का नहीं सोच सकते हम। सह शरीर मैकेनिकल तरीके से तो जो निकटतम जगह है सूर्य, वहां तक भी नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं वहां जाने की एक विधि होती है और वो विधि क्या है वो शास्त्र में बताई गई है। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भौतिक जगत में तीन प्रकार के भौतिक गुण होते हैं, सत्व, रजो तथा तमोगुण। किंतु आध्यात्मिक जगत में रजो तथा तमोगुणों का नामो निशान भी नहीं है, वहां केवल सत्व गुण होता है जो तमोगुण या रजोगुण के कलमश से सर्वथा मुक्त होता है। भौतिक जगत में चाहे कोई व्यक्ति पूर्णतया सत्वगुणी ही क्यों न हो, वह भी तमो तथा रजोगुण से कभी कभी दूषित हो सकता है। किंतु वैकुंठ जगत में अर्थात आध्यात्मिक आकाश में एकमात्र सत्वगुण अपने शुद्ध रूप में विद्यमान होता है। भगवान तथा उनके भक्तगण वैकुंठ लोकों में निवास करते हैं और वे उसी दिव्य गुण अर्थात शुद्ध सत्व वाले होते हैं। वैकुंठ लोक वैष्णवों को अत्यंत प्रिय है और वैष्णवों के भगवत धाम की और निरंतर अग्रसर होने में भगवान स्वयं अपने भक्तों की सहायता करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान का जो ये लोक होता है, वैकुंठ लोक होता है, उसमें तीन गुण नहीं होते हैं। ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण नहीं होते हैं। वो गुणों से रहित होता है। उसके अंदर केवल शुद्ध सत्व होता है और शुद्ध सत्व गुण के कारण जितने भी प्राणी होते हैं उनके अंदर केवल शुद्ध सत्व होता है और इसी दिव्य गुण अर्थात शुद्ध सत्व वाले के कारण वैकुंठ लोक वैष्णवों को अत्यंत प्रिय है और वैष्णवों के भगवत धाम की ओर निरंतर अग्रसर होने में भगवान स्वयं अपने भक्तों को भक्तों की सहायता करते हैं। अब ब्रह्मा जी भगवान के वैकुंठ धाम की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं, यत्र नय श्रेयसम नाम वनम काम दुघैर द्रुमय सर्वर्तु श्रीभिर विभ्राजत कैवल्यमिव मूर्तिमत। यत्र नय श्रेयसम नाम, यत्र मना वैकुंठ लोक में, वहां पर नए श्रेयसम अर्थात शुभ नाम अर्थात नामक वनम एक जंगल है, काम दुर्घय अर्थात इच्छा पूरी करने वाले, द्रुमय अर्थात द्रुम कहते वृक्ष को, और सर्व यानी समस्त, ऋतु अर्थात ऋतु यानी मौसम ऋतुओं में, श्री भी अर्थात फूलों से और फलों से, विभ्राजत अर्थात सुशोभित होते हैं या शोभायमान होते हैं, कैवल्यम आध्यात्मिक, इव अर्थात सदृश, मूर्तिमत यानी साकार। अनुवाद, उन वैकुंठ लोकों में अनेक वन हैं जो अत्यंत शुभ हैं। उन वनों के वृक्ष कल्प वृक्ष हैं जो सभी ऋतुओं में फूलों तथा फलों से लदे रहते हैं, क्योंकि वैकुंठ लोकों में हर वस्तु आध्यात्मिक तथा साकार होती है। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि वैकुंठ लोक में भूमि वृक्ष फल फूल तथा गव्य हर वस्तु पूर्णतया आध्यात्मिक तथा साकार होती है। वहां के वृक्ष कल्प वृक्ष हैं। इस भौतिक लोक में वृक्ष भौतिक शक्ति के आदेशानुसार ही फूल फल उत्पन्न कर सकते हैं, किंतु वैकुंठ लोक में वृक्ष भूमि निवासी तथा पशु सभी आध्यात्मिक होते हैं। वहां वृक्ष तथा पशु या पशु तथा मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता। यहाँ पर मूर्तिमत शब्द सूचित करता है कि हर वस्तु का आध्यात्मिक स्वरूप होता है। इस श्लोक में निर्विशेषवादियों द्वारा कल्पित रूप विहीनता अर्थात नकारता का खंडन किया गया है। वैकुंठ लोकों में यद्यपि हर वस्तु आध्यात्मिक है, किंतु इसका एक विशेष रूप रहता है, वृक्षों तथा मनुष्यों का रूप होता है, और चूंकि वे भिन्न भिन्न रूप से निर्मित होती हैं, होते हुए भी सभी आध्यात्मिक हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता। श्रील प्रभुपाद की जय। जिस तरह से इस भौतिक जगत में वृक्ष का अलग स्वरूप होता है, वो सिर्फ खड़े रहना जानते हैं, वो बोल नहीं सकते, वो मूवमेंट नहीं कर सकते, और पशु होते हैं उनके अंदर बुद्धि नहीं होती है, लेकिन वैकुंठ में ऐसा नहीं है। वैकुंठ में जो नदियां हैं ना, वो भी स्त्री की तरह बोलती हैं, चलती हैं और संबंध भी बना सकती हैं, मतलब बात कर सकती हैं, और वृक्ष भी कल्प वृक्ष होते हैं, उनको पता होता है क्या चाहिए, वो इस तरह से। तो यहाँ बोला जाता है सबका साकार एक स्वरूप होता है, मूर्तिमत अर्थात साकार है। तो वो कैसा होता है, कितना अद्भुत होता है, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से समझाया। आगे कहते हैं, वैमानिका सललनाश्चरितानि शश्वत् गायन्ति यत्र शमलक्षपणानि भर्तु अन्तर्जलेनु विकसन् मधुमाधवीनां गन्धेन खण्डितदियोप्य नीलं क्षिपन्त वैमानिका सलन। वैमानिका मतलब अपने अपने विमान के अंदर जितने भी वहां पर लोग हैं निवासी हैं वो सब अपने अपने विमान के ऊपर। सललना, ललना मतलब अपनी अपनी पत्नियों के साथ या अपनी अपनी प्रेमिकाओं के साथ। चरितानी कार्यकलाप शाश्वत नित्य रूप से गायंती यात्र यात्र मना जिन वैकुंठ लोकों में शमल शमल अर्थात समस्त अशुभ गुणों से क्षपणानी अर्थात विहीन वो भगवान जो समस्त अशुभ गुणों से विहीन हैं जो पवित्र हैं उनके गुणगान करते हैं। गायन्ति यत्र शमलम तो वो सब अपने अपने विमानों में बैठते हैं और जोर जोर से भगवान के गुणगान करते हैं। भर्तु अर्थात परमेश्वर का अंतर जले अर्थात जल के बीच में अनुविकसत अर्थात खिलते हुए मधु यानी सुगंधित शहद से पूर्ण माधवी नाम यानी माधवी फूलों से यानी जल के अंदर जो बहुत ही सुगंधित माधवी नाम के फूल सुगंधित होते हैं ना उनके अंदर बहुत ही सुगंध होती है। गंदे न खंडित गंदे न मतलब सुगंध से खंडित मतलब विचलित होकर दिया मन अपि यानी यद्यपि अनिलम मंद पवन क्षिपंतः उपहास करते हैं मतलब वो इतने सुंदर लगते हैं ये जो वैकुंठ के प्राणी होते हैं अपने अपने विमानों में अपने अपने प्रेमिकों के साथ जब विहार कर रहे होते हैं और भगवान का गुणगान कर रहे होते हैं तो इतने सुंदर लगते हैं कि वो तो इतने सुंदर माधवी के फूलों को भी उनको भी उपहास करते हैं मतलब उनका भी काम नहीं है वो भी उसके सामने बिल्कुल इतने सुंदर नहीं लगते जितने वो सुंदर लग रहे होते। अनुवाद देखिए वैकुंठ लोक के निवासी अपने विमानों में अपनी पत्नियों तथा प्रियसियों के साथ उड़ाने भरते हैं और भगवान के चरित्र तथा उन कार्यों का शाश्वत गुणगान करते हैं जो समस्त अशुभ गुणों से सदैव विहीन होते हैं। भगवान के यश का गान करते समय वे सुगंधित तथा मधु से भरे हुए पुष्पित माधवी फूलों की उपस्थिति तक का उपहास करते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस श्लोक से प्रतीत होता है कि वैकुंठ लोक समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। वहाँ विमान है जिनमें वहाँ के निवासी अपनी प्रियसियों के साथ बैठकर आध्यात्मिक आकाश में विचरण करते हैं। वहाँ पुष्पित फूलों की सुगंध को ले जाने वाली मंद वायु है और यह वायु इतनी उत्तम है कि यह अपने साथ फूलों का मधु भी वहन करती है। किंतु वैकुंठ के निवासी भगवान का गुणगान करने में इतनी रुचि रखते हैं कि भगवान के यश का उच्चारण करते समय वे ऐसी उत्तम वायु द्वारा उत्पन्न व्यवधान को पसंद नहीं करते। दूसरे शब्दों में वे शुद्ध भक्त होते हैं। वे भगवान के महिमा गान को अपनी इंद्रिय तृप्ति की उपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। वैकुंठ लोकों में इंद्र तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। पुष्पित फूल की सुगंध को सूंघना निश्चित रूप से अति उत्तम है किंतु यह एकमात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए ही होता है। वैकुंठवासी भगवान की सेवा को सर्वोच्च वरीयता प्रदान करते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति को नहीं। दिव्य प्रेम में भगवान की सेवा करने से ऐसा दिव्य आनंद मिलता है जिसकी तुलना में इंद्र तृप्ति नगण्य मानी जाती है। श्रील प्रभुपाद की जय।
वैकुंठ लोक के निवासियों के हृदय में भगवान की भक्ति के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं होती है। इतना सुंदर वातावरण, इतनी सुगंधित वायु, इतना सुंदर वैभव और ऐश्वर्य, वो सब उनको आकर्षित नहीं करता और वो सदैव भगवान का गुणगान करते हैं। और हम भौतिक जगत के प्राणी थोड़ा सा आनंद, थोड़ा सा सुंदरता या फिर वैभव प्राप्त होता है तो उसी में खो जाते हैं और गुणगान को, भगवान की सेवा को, भक्ति को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। छोड़ और तो छोड़ें, इतना दुर्भाग्य है कि थोड़ी सी निद्रा का आनंद लेने के लिए आध्यात्मिक जगत के आनंद प्रभात वेला, जो प्रभात साधना है, उसको छोड़ देते हैं। तो हम ना जाने कब इस योग्य बनेंगे कि हम आध्यात्मिक जगत में भगवान की सेवा करें, क्योंकि अब तक इंद्रिय तृप्ति की, जो इंद्रियों के आनंद की, इंद्रियों को सुविधा पहुंचाने की जो इच्छा है, वो तो कभी कम ही नहीं हो रही है। हर वक्त यही सोचते हैं कि मुझे आनंद मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन वैकुंठ लोक के जीवों को भगवान के यशोगान के अतिरिक्त और कुछ आनंद की आवश्यकता या इच्छा नहीं होती है। ये तो थे वहाँ के निवासी। और वहाँ के जो पक्षी हैं, वो किस तरह से भगवान का गुणगान करते हैं, उसके विषय में ब्रह्मा जी कहते हैं, पारावतान यवृत सारस चक्रवा दात्यूह हंस शुक तितरिणाय कोलाहलो विरमते चिरमात्रमुच्यै भृंगादिपे हरिकथा इव गायमाने। पारावत अर्थात कबूतर, अन्यभृत अर्थात कोयल, सारस अर्थात सारस और चक्रवात अर्थात चक्कई या चकवा, दात्यूह हंस शुक तितरा, दात्यूह अर्थात चातक पक्षी, हंस मतलब हंस, शुक अर्थात तोता, तितरी अर्थात तीतर, बरहिणाम अर्थात मोर का यह जो, कोलाहलो विरमते, कोलाहल अर्थात कोलाहल जो शोर होता है, विरमते रुकता है, अचिर मात्रम अर्थात अस्थाई रूप से, अचिर मात्र मतलब अस्थाई रूप से, उच्चय तेज स्वर से, भृंगादिपे अर्थात भौरों का राजा, हरिकथाम हरिकथामिव गायने, हरिकथाम यानी भगवान की महिमा इव सदृश गायमाने अर्थात गाए जाते हैं। अनुवाद, जब भौरों का राजा भगवान की महिमा का गायन करते हुए उच्च स्वर से गुणगान करता है तो कबूतर, कोयल, सारस, चक्रवाक, हंस, तोता, तीतर तथा मोर का शोर अस्थाई रूप से बंद पड़ जाता है। ऐसे दिव्य पक्षी केवल भगवान की महिमा सुनने के लिए अपना गाना बंद कर देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी ने एक एक श्लोक का तात्पर्य दिया है, मतलब हमको ऐसा लगेगा कि क्या है, सिर्फ पंछियों की बात की जा रही है, लेकिन ये बात बताने वाले साक्षात शुकदेव गोस्वामी हैं। और उस समय जब परीक्षित महाराज को श्राप मिला था ना, उस समय उनको ये बताया जा रहा है। इसका मतलब ये कितना महत्वपूर्ण होगा, एक एक शब्द जो हम पढ़ रहे हैं ना, उसमें हर एक शब्द महत्वपूर्ण है। इसीलिए तो श्रील प्रभुपाद जी हर एक श्लोक का तात्पर्य देते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यह श्लोक वैकुंठ के परम स्वभाव का उद्घाटन करता है। वहां पर पक्षियों तथा मनुष्यों में कोई अंतर नहीं है। आध्यात्मिक आकाश की स्थिति ऐसी है कि हर वस्तु आध्यात्मिक तथा चित्र विचित्र है। आध्यात्मिक चित्र वैचित्र्य
का अर्थ है कि हर वस्तु चर है, कुछ भी अचर नहीं है। यहाँ तक के वृक्ष, भूमि, पौधे, फूल, पक्षी तथा पशु सारे के सारे कृष्ण भावनामृत में के स्तर पर होते हैं। वैकुंठ लोक की विशेषता यह है कि वहाँ इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। भौतिक जगत में गधा तक अपनी ध्वनि का आनंद लेता है, किंतु वैकुंठ लोकों में मोर, चक्रवात तथा कोयल जैसे उत्तम पक्षी भी भौरों से भगवान की महिमा की ध्वनि को सुनना अधिक पसंद करते हैं। वैकुंठ लोक में श्रवण, कीर्तन इत्यादि से आरंभ होने वाले भक्ति के सिद्धांत अधिक प्रमुख होते हैं। श्रील प्रभुपाद की यहाँ पर बताया जा रहा है, भाव बृंगादिपे हरि कथा मेव गायन। जब भौरा भी भगवान की कथा गाना शुरू करता है तो बाकी सारे मोर, कोयल, हालांकि उनकी आवाज बहुत सुंदर होती है, वो बहुत अच्छा अच्छे सुर में गा सकते हैं, लेकिन जब भंवरा भिनभिनाने लगता है तो वो सोचते हैं, अरे ये कितना सुंदर गा रहा है, ये भगवान का गुणगान कर रहा है, और हम क्या करते हैं, हमको ऐसा लगता है बस हमें ही बोलना चाहिए, बाकी सबको सुनना चाहिए, है ना। लेकिन जो शुद्ध वैष्णव होते हैं वो हमेशा श्रवण करने की इच्छा करते हैं कि मुझे किसी भक्त के मुखारविंद से कुछ श्रवण करने का अवसर मिले। इसलिए जो भक्त होते हैं वो कभी भी श्रवण करने में आलस्य नहीं देखते, कहना ही हमें सुनना है। अच्छा सुनने वाला ही अच्छा बोलने वाला बन सकता है। इसलिए यहाँ पर हमें सिखाया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा श्रवण के अंदर रुचि होनी चाहिए। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, अब ब्रह्मा जी वहां के वृक्षों की बात कर रहे हैं कि वो इतने सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, लेकिन जब तुलसी महारानी के द्वारा तपस्या की गई है इतनी ज्यादा, जो भगवान को इतनी सुंदर लगती है, तो वो भगवान क्योंकि तुलसी महारानी को बहुत पसंद करते हैं इसलिए उनको सम्मान प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मंदार कुंद कुरबोत्पल चंपकाण पुन्नाग नाग बकुलांबुज पारिजाता गंधेर चिते तुलसी का भरणेन तस्या यस्मिस्तप सुमनसो बहुमानयन्ति। मंदार कुंद कुरबो, मंदार अर्थात मंदार, कुंद अर्थात कुंद, कुरब ये सब नाम है, कुरबक, उत्पल अर्थात उत्पल, चंपक यानी चंपक, अरण यानी अरण फूल, पुन्नाक पुन्नाक, नाग नागकेशर, बकुला अर्थात बकुल, अम्बुज यानी कमुदनी, पारिजाता यानी पारिजात, गंधीर चिते गंध अर्थात सुगंधित, अर्चित यानी पूजित होकर, तुलसिका भरणेन तस्या तुलसिका यानी तुलसी, आभरणेन माला से तस्या उसकी, यस्मिन यस्मिन मतलब जिस वैकुंठ में, यस्मिस्तप सुमनसो बहुमानयन्ति, यस्मिन मन जिस वैकुंठ में तपस्या सुमनसो अच्छे मन वाले वैकुंठ मन वाले बहुमानयन्ति, बहुमन अत्यधिक मानयन्ति मन गुणगान करते हैं। अनुवाद, यद्यपि मंदार कुंद कुरबक उत्पल चंपक अरण पुन्नाग नागकेशर बकुल कमुदिनी तथा पारिजात जैसे फूलने वाले पौधे दिव्य सुगंध से पूरित हैं, फिर भी वे तुलसी द्वारा की गई तपस्या से सचेत हैं, क्योंकि भगवान तुलसी को विशेष वरीयता प्रदान करते हैं और स्वयं तुलसी की पत्तियों की माला पहनते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर तुलसी की पत्तियों की महत्ता का स्पष्ट उल्लेख है। भक्तिमयी सेवा में तुलसी के पौधे तथा उनकी पत्तियां अतीव महत्वपूर्ण हैं। भक्तों के लिए संस्तुति की गई है कि वे प्रतिदिन तुलसी के पौधे को सींचें तथा भगवान की पूजा के लिए उसकी पत्तियां एकत्रित करें। एक बार एक नास्तिक स्वामी ने कहा, तुलसी के पौधे को सींचने से क्या लाभ, इससे अच्छा तो बैंगन का सींचना होगा। बैंगन सींचने से कुछ फल मिल सकेगा, किंतु तुलसी को सींचने से क्या लाभ। ये मूर्ख प्राणी भक्ति से अपरिचित होने के कारण कभी कभी सामान्य लोगों की शिक्षा का के साथ उत्पात मचाते हैं। आध्यात्मिक जगत की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ भक्तों के मध्य ईर्ष्या द्वेष नहीं होती है। यह बात फूलों तक को भी तक में भी लागू होती है जो तुलसी की महानता से परिचित हैं। चारों कुमारों ने जिस वैकुंठ जगत में प्रवेश किया, वहाँ के पक्षी तथा फूल तक भगवान की सेवा के प्रति सचेष्ट हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर समझा रहे कि यहाँ पर भौतिक जगत में बस ये देखा जाता है कौन सी चीज से हमारा फायदा हो रहा है, जिस चीज से हमारा फायदा नहीं होता वो हमारे काम की नहीं है। तुलसी में कोई फल नहीं लगता, तुलसी में कोई सब्जी नहीं लगती, तो उसको सींचने से क्या लाभ। लेकिन वैकुंठ जगत में जो जितना अधिक भगवान की सेवा करता है उतना ही अधिक महत्वपूर्ण है। तुलसी महारानी ने भगवान की सेवा के लिए कितनी बड़ी तपस्या की है, इसलिए वहाँ के दूसरे बड़े इतने बड़े बड़े पौधों के और वृक्षों के नाम बताएंगे कि वो सब तुलसी को नतमस्तक हो जाते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनको आदर प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान इस तुलसी से कितना प्रसन्न है और कितना प्रेम करते हैं। आगे ब्रह्मा जी, वहाँ के निवासियों के अंदर काम वासना का लेश मात्र भी नहीं है, इसके विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं, यत्संकुलं हरिपदान तेमात्र दृष्टैर वैदूर्यमारकतहेम मय विमानै येषां बृहत्कटितटस्मितशोभिमुख्य कृष्णात्मन नरज आददुरुत्स्मयादय। यत संकुलम, यत मन जो वैकुंठ धाम है, संकुलम यानी उससे पूरित हरि पदा भगवान हरि के दोनों चरण कमलों पर आनति अर्थात नमस्कार द्वारा मात्र दृष्ट है, केवल दृष्ट यानी प्राप्त किए जाते हैं। वैदूर्य मारकतहेम मयैर्विम वैदूर्य अर्थात वैदूर्य या बहुत ही सुंदर जो मणियां होती हैं, मारकत यानी मरकत जो हीरे जवाहरात होते हैं, हेम यानी स्वर्ण, मय से निर्मित विमाने विमान यानी बहुत ही सुंदर हीरे जवाहरात और सोने से जड़े हुए विमानों पर बैठे होते हैं। और ये शाम बृहत कति तथा ये शाम मतलब उन यात्रियों का, बृहत अर्थात विशाल, कटितटा यानी कूल है, स्मित अर्थात हंसते हुए, सुशोभि अर्थात सुंदर, मुख्य अर्थात मुखमंडल, सुशोभि मुख्य बहुत ही सुंदर उनका मुखमंडल होता है जो उनके साथ बैठी हुई होती हैं। लेकिन कृष्णात्मना न रज आल, कृष्णात् यानी कृष्ण में आत्मनाथ जिनके मन लीन है, न रजा न मना नहीं, रज अर्थात यौन इच्छा, आददु अर्थात उत्तेजित करती है, उत्समय आद्य यानी गणेश मित्रवत व्यवहार या हंसी मजाक द्वारा। अनुवाद देखिए, ब्रह्मा जी कहते हैं, वैकुंठ निवासी वैदूर्य मरकत तथा स्वर्ण से बने हुए अपने अपने निवासियों में सॉरी अपने अपने विमानों में यात्रा करते हैं। यद्यपि वे विशाल नितंबों तथा सुंदर हसीली मुखों वाले अपनी अपनी प्रियसियों के साथ सट्टे रहते हैं, किंतु वे उनके हंसी मजाक तथा उनके सुंदर मोहकता से कामोत्तेजित नहीं होते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भौतिक जगत में भौतिकतावादी व्यक्तियों द्वारा अपने कठिन शर्म से ऐश्वर्यों की प्राप्ति की जाती है। कोई तब तक भौतिक संपन्नता का भोग नहीं कर सकता जब तक उसे प्राप्त करने के लिए वह कठोर श्रम ना करे। किंतु भगवत भक्तों को जो वैकुंठवासी हैं, मणियों तथा मरकतों की दिव्य स्थिति को भोगने का अवसर प्राप्त होता है। मणिजटित स्वर्ण के आभूषण कठिन श्रम करने से नहीं अपितु भगवान के आशीष से प्राप्त होते हैं। दूसरे शब्दों में भक्तगण चाहे वैकुंठ जगत के हों या इस जगत के, वे कभी दरिद्र नहीं हो सकते, जैसा कि कभी कभी मान लिया जाता है। उनके पास भोग के लिए पर्याप्त ऐश्वर्य होते हैं, किंतु उन्हें पाने के लिए उन्हें श्रम नहीं करना पड़ता। यहाँ यह भी कहा गया है कि वैकुंठ लोक के निवासियों की प्रियसियां इस भौतिक जगत में ही नहीं, प्रत्युत उच्च लोकों में जाने वाली प्रियसियों से भी कई गुना अधिक सुंदर होती हैं। यहाँ इसका विशेष उल्लेख हुआ है कि स्त्री के चौड़े नितंब अति आकर्षक हैं और वे मनुष्य की काम वासना को उत्तेजित करते हैं, किंतु वैकुंठ का अद्भुत गुण यह है कि यद्यपि स्त्रियों के नितंब चौड़े हैं और मुखमंडल सुंदर है और वे मरकत तथा मणियों के आभूषणों से सुसज्जित रहती हैं, फिर भी पुरुषगण कृष्ण भावनामृत में इस कदर निमग्न रहते हैं कि स्त्रियों के सुंदर शरीर उन्हें आकृष्ट नहीं कर पाते। दूसरे शब्दों में स्त्रियों की संगति का आनंद तो है, किंतु उनके साथ यौन संबंध नहीं होता। वैकुंठवासियों में आनंद का श्रेष्ठतर मानदंड होता है, अतएव यौन आनंद की कोई आवश्यकता पड़ती ही नहीं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि सुंदरता तो उनकी बताई जाती है यहाँ पर स्त्रियों की, लेकिन उनके साथ कोई सेक्सुअल संबंध करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि वहां का आनंद जो होता है वो इतना उच्च है, भगवत गुणगान का, भगवान से प्रेम का, भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने का। तो ये जो घृणित सुख है, यौन सुख, उसके लिए कोई सोच भी नहीं सकता, वहां पर उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उन स्त्रियों की सुंदरता और विशेषता बताते हुए सुखदेव गोस्वामी जो परम सन्यासी हैं, वो उनकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी के मुखारविंद से हम सुन रहे हैं, वे कहते हैं, श्री रूपिणी क्वणयति चरणारविंदम लीलां भुजेन हरिसत्म मुक्त दोषा संलक्ष्यते स्फटिकुक ककुंड्य उपेत हेमनी सम्मार्जतीव यदुना यदनुग्रहणे न्ययत्ना। श्री रूपणी, श्री कहते लक्ष्मी जी को, रूपणी यानी सुंदर रूप धारण करने वाली, क्वणयति अर्थात शब्द करती हैं, चरण अरविंदम अर्थात चरण कमल, लीलांबुजेन यानी कमल के फूल के साथ क्रीड़ा करती हैं, हरि सद्मनी अर्थात भगवान के घर में, और मुक्त दोषा अर्थात समस्त दोषों से वे मुक्त हैं, संलक्ष्यते अर्थात दृष्टिगोचर होती हैं, स्फटिका अर्थात संगे मरमर, कुड्ये अर्थात दीवालों में, उपेत मिली जुली, हेमनी यानी स्वर्ण, सम्मार्जितीव यदनुग्रह, सम्मार्जितीव यानी बुहारने वाले की तरह लगने वाली, यद अनुग्रहण है ना उसकी कृपा पाने के लिए, अन्य यानी दूसरे, यत्न अत्यधिक सतर्क। वे कहते हैं इतनी सुंदर है वो, इतनी सुंदर लगती हैं लक्ष्मी महारानी की जितनी सुंदर है, लेकिन फिर भी करती क्या है, सम्मार्जितीव। वो तो वहां के जो दीवारें हैं किनारे हैं उनको साफ करती हैं, जैसे मार्जन करते ना, जैसे सफाई करने वाली होती हैं। वो क्यों कर रही होती हैं? क्योंकि उनको लगता है यहीं से अभी भगवान के दर्शन हो जाएंगे, उनके अनुग्रह प्राप्त करने के लिए। वो ये नहीं देखते मैं कितनी कोमल हूँ, मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं मुझे ये कार्य नहीं करना चाहिए, भगवान के एक दर्शन के लिए। सम्मार्जति यद अनुग्रह, वो यत्न बहुत प्रयास करती हैं। अनुवाद, वैकुंठ लोकों की महिलाएं इतनी सुंदर हैं कि जैसे देवी लक्ष्मी स्वयं है, ऐसी दिव्य सुंदरियां जिनके हाथ कमलों के साथ क्रीड़ा करते हैं तथा पांव के नूपुर झनकार करते हैं, कभी कभी इन संगमरमर की दीवालों को जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर सुनेले किनारों से अलंकृत हैं, इसलिए बुहारती दिखाई देती दिखी जाती हैं कि उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद कहते हैं ब्रह्म संहिता में ये कहा गया है कि भगवान गोविंद के धाम में सदैव करोड़ों लक्ष्मियां उनकी सेवा करती हैं। लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्यमानम, ये करोड़ों अरबों लक्ष्मियां जो वैकुंठ लोक में निवास करती हैं, पुरुषोत्तम भगवान की वास्तविक प्रेमिकाएं नहीं है, अभी तो भगवत भक्तों की पत्नियां हैं और वे भगवान की सेवा भी करती हैं। यहाँ ये कहा गया है कि वैकुंठ लोकों में संगमरमर के घर बने हुए हैं, इसी प्रकार ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वैकुंठ लोकों का फर्श स्पर्श मणि की बनी की फर्श जो है वो स्पर्श मणि की बनी हुई है, इसलिए वैकुंठ में पत्थर को बुहारने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि उस पर रंच मात्र भी धूल नहीं रहती। फिर भी भगवान को संतुष्ट करने हेतु स्त्रियां सदैव संगमरमर की दीवालों को झाड़ती रहती हैं, क्योंकि इसलिए कि वे ऐसा करके भगवान की कृपा दृष्टि पाने के लिए उत्सुक रहती हैं। वहां पर मट्टी नहीं आती, धूल नहीं उड़ती, हमारे घर में कैसे गंदगी हो जाती है, फिर हमको साफ करना पड़ता है ना रोजाना, तो वैकुंठ में ऐसा है नहीं, वहां पर सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी वो साफ करती है कि यहाँ से भगवान जाएंगे ना, मुझे देखेंगे, कृपा दृष्टि मिलेगी, एक मुस्कुरा के जब वो मेरी तरफ देखेंगे, बस उसके लिए सुबह से शाम तक खड़ी होती, सफाइयां कर रही होती है। यहाँ ये भी कहा गया है कि वैकुंठ लोकों में लक्ष्मियां दोष रहित होती हैं। सामान्यतः लक्ष्मी जी एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहती, उनका नाम चंचला है जिसका अर्थ है जो स्थिर न हो। अतएव हम देखते हैं कि जो व्यक्ति बहुत ही धनवान है वह अतीव निर्धन बन सकता है। एक और उदाहरण रावण का है। रावण लक्ष्मी अर्थात सीता जी को अपने साम्राज्य में ले गया, किंतु लक्ष्मी की कृपा द्वारा सुखी होने की बजाय उसका परिवार तथा सारा साम्राज्य विनष्ट हो गया। इस तरह रावण के घर में लक्ष्मी चंचला अर्थात अस्थिर है। रावण की श्रेणी के लोग केवल लक्ष्मी को उनके पति नारायण के बिना चाहते हैं, अतएव लक्ष्मी के कारण वे चंचल, लक्ष्मी जी के कारण वे चंचल होते हैं। भौतिकतावादी व्यक्ति लक्ष्मी जी में दोष ढूंढते हैं, किंतु वैकुंठ में लक्ष्मी जी भगवान की सेवा में जुटी रहती हैं। भाग्य की देवी होते हुए भी लक्ष्मी जी भगवान की कृपा के बिना सुखी नहीं रह सकती। लक्ष्मी जी को भी सुखी होने के लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता पड़ती है। फिर भी भौतिक जगत में सर्वोच्च प्राणी ब्रह्मा भी सुख के निमित्त लक्ष्मी जी की कृपा के लिए उनका मुंह जोहते रहते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।